الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 121 سے ہم شروع کر رہے ہیں سورہ البقرہ کی. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے, تو وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے. اہل کتاب کے بارے میں یہاں الذین آتیناہم کے الفاظ بولے گئے ہیں. دو تعبیریں اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہیں قرآن مجید میں, اوت الکتاب اور آتیناہم الکتاب. اوت الکتاب کا مطلب ہے جن کو کتاب دی گئی, اور آتیناہم الکتاب کا مطلب ہے ہم نے ان کو کتاب دی. تو جو اوت الکتاب ہے اس میں اچھے اور برے دونوں ہی اہل کتاب شامل ہوتے ہیں, اور آتیناہم الکتاب میں اچھے اہل کتاب شامل ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ہم نے دی ان کو, ہم نے جن کو کتاب دی کے اسلوب سے محبت اور التفات جھلکتا ہے. تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے آتیناہم الکتاب, اس کے آگے ان کا اچھا ہی پہلو سامنے آیا ہوگا. تو الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے اپنی طرف سے اپنی کتاب دی تھی, یتلونہ حق تلاوت, وہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں. تلاوت عربی زبان میں, ہمارے ہاں تلاوت اردو میں صرف ہو گیا کہ ناظرہ پڑھنے کو بھی تلاوت کہہ دیتے ہیں. میں نے اس رمضان میں قرآن کی 3 دفعہ تلاوت مکمل کی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھا ہے. لیکن عربی زبان میں تلاوت کا مطلب پڑھنا ہے پیروی کرنے کے لیے, سمجھ کر عمل کرنے کے لیے. تو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے, یعنی سمجھ کر پڑھتے اور اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ, وہی قرآن مجید پر بھی ایمان لائیں گے. اب یتلونہ حق تلاوت ہی میں دو پہلو ہو سکتے ہیں, کہ اپنی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی جو آیتیں اتر رہی ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ, وہی قرآن مجید پر ایمان لائیں گے. یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے آدمی کو اپنی کتاب کی پیروی کرنا ہوگی جو اس کے پاس پہلے سے ہے. یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر وہ اس کی پیروی کریں گے, اس کا حق ادا کریں گے سمجھنے کا کہ اس میں باتیں کیا کہی گئی ہیں, تو وہ, یہ صرف تورات کا مقام نہیں ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے, قرآن مجید کا بھی یہی مقام ہے. قرآن مجید کو فرقان کہا گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے درمیان باتوں کا فیصلہ کرنے والا ہے, میزان قرار دیا گیا, اس پہ چیزیں تولی جا سکتی ہیں. لیکن جو اس کو پڑھے گا نہیں, جو اس کو سمجھے گا نہیں, وہ اس کو میزان کے طور پر استعمال بھی نہیں کر سکے گا. تو ہمارے اختلافات میں کتاب الہی فیصلہ کن ہو سکتی ہے, اور ہماری اپنی غلطیوں کو دور کرنے میں بھی یہ فیصلہ کن ہو سکتی ہے. لیکن انہی کے لیے کہ جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں, اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, یا سمجھتے نہیں ہیں, عمل کرنے کی کوشش تو درکنار, ان کو پھر کتاب الہی سمجھ نہیں آ سکتی, خواہ وہ قرآن مجید ہو, خواہ وہ تورات ہو, خواہ وہ انجیل ہو. اب یہ جو پچھلے جتنے بھی گروہ زیر بحث تھا شروع سے, یہ آیت نمبر 7-8 سے لے کر یہاں تک جو آیت نمبر 120 پہ پچھلی دفعہ درس ختم ہوا تھا, یہ وہ قوم ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھتی نہیں تھی. اس لیے بیچ میں اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے رہے کہ تلک امانیہم, یہ ان کی تمنائیں ہیں, یہ جانتے ہی نہیں ہیں, بے علم ہیں انہوں نے کبھی. تو یہ جو सारी बातें थी इसलिए थी कि इन्होंने अपनी तौरात को भी सही तरीके से पढ़ा हुआ था। बस जिस तरह से हमारे मुसलमानों की अक्सरियत है, लगता है कि ऐसे ही यहूदियों की अक्सरियत थी कि बस सुनी सुनाई बातें हैं, अपनी किताब से वाकफियत नहीं है। तो जो किताब को यानी तौरात को सही तरीके से पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते रहे हैं, उसको सही तरह से समझने की कोशिश करते रहे हैं, वही कुरान मजीद पर ईमान लाएंगे। वमई यकफुर बही, और जो कुरान मजीद का इनकार करेगा, फ़ाउलाइका हुमुल खासिरून, वो घाटे में रहेंगे। तो घाटे में रहने का मतलब यह है कि वो कल क़यामत वाले दिन नाकाम हो जाएंगे। क़यामत वाले दिन नाकाम होंगे तो फिर तो ऐसी बात है कि इससे बड़ा घाटा क्या होगा। कुफर का मतलब हमेशा याद रखिए कि ये सादा इनकार नहीं होता, बल्कि ये बात को समझकर इनकार करना होता है, जानते बूझते इनकार करना होता है। जिसको समझ नहीं आ रही, अभी गौर कर रहा है, अभी सोच रहा है, तो वो काफिर नहीं है। तो काफिर वो आदमी है जो सोचने समझने के बावजूद पूरी आज़ादी के साथ, पूरी तसल्ली के साथ हक बात का इनकार करते। तो जो कुरान मजीद का इनकार करेगा, ये जो जुमला है बहुत दिलचस्प है। पीछे सिर्फ आतैनाहुमुल किताब है और उसके लिए ज़मीर या तलूनहु आ गई, हक्का तिलावत ही में ही ज़मीर आ गई, उलाई का युमिनूना बही में ही ज़मीर आ गई। आप देख रहे होंगे कि मैंने तर्जमा किया है कि उनको किताब दी गई तो वो इस किताब की अच्छी तरीके से पढ़ते और पैरवी करते हैं, वही इस पर ईमान लाएंगे। किस पर? कुरान का पीछे ज़िक्र नहीं है। वो कलाम के अंदर करीने से वाज़े होता है इस तरह की चीज़ें कि किस चीज़ पर। वो किताब को तो मान ही रहे हैं, अब जो ईमान लाने की बात हो रही है तो इस किताब पे हो रही है। वमई यकफुर बही में भी ऐसा ही है कि कुरान नहीं कहा गया, बस इस जिसने इसका कुफर किया। तो ये जुमला इसलिए दिलचस्प है कि ये दोनों तरफ ज़मीर जा सकती है, आतैनाहुमुल किताब की, किताब की तरफ भी और कुरान की तरफ भी, कि अब जिसने तौरात को समझने के बाद उसकी पैरवी में नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना तो वो दरअसल काफिर है, वो घाटा पाएगा। खसारा जो है वो रसूलों के अहद में जो लोग होते हैं उनको दोहरा खसारा उठाना पड़ता है, एक दुनिया में और एक आखरत में। यहूद को जो दुनिया में खसारा हुआ, सूरह तौबा में जाकर हम जब पहुँचेंगे तो उनको बताया गया है कि उनको मुसलमानों के मातहत होकर रहना पड़ना है, और नबी अकरीम सल्लम से पहले उनको ईसाइयों के मातहत होकर रहना पड़ना था। फ़ाउलाई का हमुल खासिरून में उनके लिए दुनिया का खसारा भी है और आखरत का खसारा भी है। आखरत का खसारा जो कुफर करेंगे वो हमें मालूम है कि दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक दें। तो ये गोया एक तरह से पूरे मज़मून को जो पीछे से चला रहा था उसको 121 में आकर मुकम्मल कर दिया है कि जो लोग पीछे कुरान मजीद को नहीं मान रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं, बातें बना रहे हैं, और ये ख्याल करते हैं कि यहूद व नसारा में शामिल हो जाएंगे तो तभी कामयाबी होगी, ये सारी बातें करने वाले अपनी किताब से वाकिफ़ नहीं हैं। अपनी किताब से वाकिफ़ नहीं हैं तो इसलिए कुरान मजीद को भी नहीं मान रहे। तो ये गोया पूरी पिछली सारी गुफ्तगू थी, उसको एक इंजाम तक पहुँचा के आगे फिर नए सिरे से एक बात शुरू की जा रही है, या बनी इसराइल। तो गोया यहाँ पर खुतबे का जो सूरह अल-बकरा में है उसका एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो गया। एक तमहीद थी जहाँ पे वो तीन ग्रहों का जिक्र था, उसके बाद अब एक और समझिए कि सेक्शन जो है, सब सेक्शन सूरह का, वो मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पर उनके बहुत सारे मज़ूमात को तोड़ा गया है। ये बात बताई गई थी कि ये ईमान क्यों नहीं ला रहे, उसके असबाब बताए गए थे। ये बताया गया था कि ये किताबुल्लाह को मानते ही नहीं हैं, इनका ईमान ईमान ही नहीं है, ये तो ज़ाहरी तौर पर बस कुछ इकरार किए बैठे हैं, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये बताया गया था कि ये हक और बातिल को गड़बड़ करके पेश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बस हमारी भी ईमान मान लिया जाए जैसा भी है, और हम आपका ईमान मान लेते हैं, जैसा भी है मुसालियत की कोशिशें करते थे, इस तरह के दानश्वर किस्म के लोग थे, ये सारे के सारे जो हैं उन पर तबसरा मुकम्मल हो गया यहाँ पर। आगे जो है वो इस बात को अल्लाह ताला ने वाज़े किया है कि जिसने ईमान, जो भी ईमान लाया और नेक अमल किए, उसका अजर उसी को मिलेगा, किसी दूसरे के हिस्से कोई चीज़ नहीं आएगी। ये इसलिए गुफ्तगू हुई कि बनी इसराइल ये समझते थे कि हम अंबिया की औलाद हैं, हमें कुछ नहीं होगा, उनकी नेकियां हमारे भी काम आ जाएंगी। तो ये दो छोटी छोटी फसलों में इस मज़मून को बयान किया है, और इस मज़मून को बयान करते हुए वो सारे हकायक सामने रख दिए हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से थे। उससे ये एक तमहीद बन जाएगी अगली सारी गुफ्तगू की कि उम्मत मुस्लिमा की जो तासीस हो रही है नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उसकी तमहीद भी बन रही है। तो गोया इस अगले हिस्से का दोहरा किरदार है, यहूद को ये बताना कि मिल्लत इब्राहिमी क्या है, उसके असासात क्या हैं, और मिल्लत इब्राहिमी में आने से तो निजात पा सकते हो, औलाद इब्राहिम होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी तरफ उम्मत इस्लामिया जो बन रही थी नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया, उसको ये बताया कि उसकी असासात क्या हैं, और उसकी आगे फिर तमहीद बन जाएगी, फिर किबला भी दुरुस्त कर दिया जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो इस फसल की जो अब शुरू हो रही है, इसकी दोहरी अहमियत है। खैर, दोहरी अहमियत तो पिछली आयतों की भी थी, मुसलमान हमारे लिए भी और उनके लिए भी, लेकिन यहाँ ये वाज़े तौर पर मिल्लत इब्राहिमी की असासात की अब बुनियाद बनेगी, और आगाज़ उन्हीं के नाम से किया गया है, या बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, ए हज़रत याकूब की औलाद, उज़्कुरू नेमत अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की, वइन्नी फज़्ज़ल्तुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें लोगों पर, तमाम लोगों पर फजीलत दी थी। यह आयत पहले भी गुजर चुकी है, इसलिए मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मौका महल मैंने वाज़े कर दिया उसका। अलबत्त दो तीन बातें जो हैं वो याद दहाने के लिए ज़रूरी हैं। एक ये कि जब ये कहा जाता है कि मेरे नेमत को, मेरे एहसान को याद रखो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस तज़करा करके बैठ जाओ, उसके तकाज़े पूरे करो, उसके जो नतीजे में आने वाली ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको पूरा करो, ये उसका लाजी मतलब होता है। बस हम बाप कहे बेटे को कि मैंने तुम्हें पाला पोसा, इसको याद रखा करो, तो ये नहीं कि वो बैठ के याद करता रहे, मतलब कि अदब एहतराम करे, वालिद की खिदमत करे, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो उज़्कुरू नेमत अल्लती का मतलब है कि जो इनाम मैंने तुम्हारे ऊपर किया था, उसके नतीजे में जो शुक्रगुजारी बनती है, जो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ मैंने आयद की थी वो पूरी करनी है, ये लाजमी हो जाएगा। दूसरी बात है अल्लती अनअमतु अलैकुम, इतनी बात काफ़ी थी, या बनी इसराइल उज़्कुरू नेमत कि मेरी नेमत को याद रखो, जो मैंने तुम्हारे ऊपर की, इसमें एहसान, मोहब्बत, अपनाइयत, उठाने का नस्बत अपनी तरफ की है अल्लाह ताला ने, तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें चुना था, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसकी वजह से तुम्हें दुनिया में फजीलत मिली, ये मैंने इनाम किया था और मैंने किया था, मेरा फ़ैसला था, तो मेरे फ़ैसले की वजह से तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी। ये नहीं हो सकता कि अब तुम मेरी बातें ना मानो और फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर यह फजीलत कायम रखूँ। वइन्नी फज़्ज़ल्तुकुम अलल आलमीन, फजीलत जो है ये उर्दू में बड़ा वो तमाम अल्फाज जो उर्दू से अरबी में आ गए हुए हैं वो बड़ा तंग करते हैं, हम तर्जमा कर जाते हैं उनको फजीलत दी, उसका नतीजा निकलता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। उर्दू में फजीलत का मतलब है कि मुस्तकिल तौर पर यह कह देना कि इसके अंदर कोई खूबियाँ हैं और इसकी बरकतें हैं और इस तरह की चीज़ें, ये मतलब नहीं है। अरबी में इसका मतलब है कि मैंने चुन लिया तुम्हें, मैंने तुम्हें चुना इस काम के लिए, इस मकसद के लिए, तो ये फजीलत इस मानी में हो जाती है। अलल आलमीन, आलमीन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इसके मानी लोगों के होते हैं, अगरचे ये आलम की जमा है दुनिया, लेकिन जब हम दुनिया बोलते हैं तो उसमें लोग ही मुराद होते हैं, कहीं कभी दुनिया से मुराद दुनिया मुराद होती है। मैं कहें दुनिया ख़राब हो गई, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि ज़मीन ख़राब हो गई, मतलब लोग ख़राब हो गए, दुनिया बदल गई है, मतलब लोग बदल गए हैं। तो दुनिया का मतलब अरबी में भी लोग हैं और उर्दू में भी, तो मैंने दुनिया पर फजीलत दी यानी लोगों पर फजीलत दी, यानी बाकी लोगों को छोड़कर मैंने इमामत की जिम्मेदारी तुम्हें दी, ये मेरा फजल याद रखो। अब जाहिर है कि जब जो अल्लाह ने चुना, जो फजीलत इनको दी, जो यानी काम जिम्मेदारी में लगाया, उसको करना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब ये असूल, ये आयत भी पहले आ चुकी है और अगला जो असूल बताया जा रहा है वो भी पहले आ चुका है। दोबारा तमहीद पूरी अल्लाह ताला वही उठा रहे हैं जो पहले उठाई थी। वत्तकु यौमन ला तज्जी नफ्सुन व नफ्सिन शैया, उस दिन से डरो जिस दिन कोई एक दूसरे के काम नहीं आएगा। वला युकबलु मिन्हा अदलुन, और ना किसी से कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा। वला तनफाउहा शफाअतुन, और ना कोई शफात सिफारिश किसी को फ़ायदा देगी। वला हुम युनसरून, और ना इनके अलावा कोई मदद आ सकेगी। अब सिफारिश, रिश्वत के और बच जाने के जितने इम्कान हैं सारे अल्लाह ताला ने गिनवा दिए हैं कि इनमें से कोई भी वहाँ काम नहीं आएगा। पहली चीज़ ये बताई कि कोई किसी का काम नहीं आएगा। यहूद का यह ख्याल था कि हम अंबिया की औलाद हैं, अंबिया हमारे काम आएंगे, उसकी नफ़ी कर दी पहले ही जुमले में। इसी तरह ये भी ख्याल हो सकता है कि चलो मैं बच जाऊँगा, बेटे को हवाले कर दूँगा, बीवी को हवाले कर दूँगा, अपने भाई को हवाले कर दूँगा, चलो अरबों के रवाज के मुताबिक अपने ग़ुलामों को हवाले कर दूँगा, खुद अपनी जान छुड़ा लूँगा। इस बात की भी इसमें नफ़ी मौजूद है कि कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी, तुम एक दूसरे के काम नहीं आ सकोगे। तो जो लोग एक दूसरे की जगह पे जिम्मेदारियां उठा लेते हैं वो काम ख़त्म हो गया, कोई मुआवजा भी नहीं लिया जाएगा। अदल, अदल का मतलब होता है, जो उर्दू में अदल है वही अरबी में है, लेकिन अदल और इंसाफ दोनों बराबरी का मफहूम भी रखते हैं, बिल्कुल वही चीज़, उतने ही वज़न की, उतनी ही कीमत की, तो तुम्हारी कोई कीमत भी वसूल नहीं की जाएगी। कि तुम कहो जी मेरे पास इतना बड़ा ख़जाना, मैं कारून कहे जी मेरे पास इतना बड़ा ख़जाना है, आप रख लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, ये काम नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला को पैसे की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो पैसे लेकर गुनाहगारों को छोड़ दे। इसके बाद फिर ये होता है कि कोई शफात आ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले गए, जी कि आप खलीलुल्लाह हैं, ज़रा हमारी सिफारिश कर दीजिए। फरमाए ये भी काम नहीं आएगी। अब ये ज़ाहिर है कि फैसले के दिन की चीज़ें हैं कि कोई अपनी जगह किसी को दे दिया, या आपको पैसे देकर जान छुड़ा ली, या किसी की सिफारिश करवा ली, लेकिन सज़ा हो गई। तो दुनिया में ये हो सकता है कि किसी बदमाश के लिए, मुजरिम के लिए कोई जत्था आए और जेल तोड़ कर ले जाए। फरमाए वला हुम युनसरून, उनकी इस तरह की भी कोई मदद नहीं की जाएगी, सारे रास्ते बंद कर दिए। तो अब ये तमहीद में बताना पेश नज़र ये था कि तुम जिन ख्यालात में अपने आप की अपनी आकबत ख़राब कर रहे हो कि हमें शफात मिल जाएगी, हम नेक लोगों की औलाद हैं, बड़ी सूरह मायदा में बयान किया है अल्लाह ताला ने कि नानु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके चहेते हैं, इस तरह के ख्याल थे इनके। हम तो उनका ख्याल था कि कुछ भी नहीं होगा। फरमाया कि नहीं, तुम डरो उस दिन से, डरो उस दिन से, यानी तुम भी पकड़े जाओगे। ये जुमला बोले ही तब जाएगा। देखिए ज़ुबान के अंदर ये होता है कि जब हम एक जुमला बोलते हैं तो उसके कुछ मख्फी बातें होती हैं, उसके नतीजे निकलते हैं। हमारे इस्तिलाह में उसको मुकद्दरात कहा जाता है कि उसके कुछ मुकद्दरात होते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि नेमत को याद रखो, तो उसका मुकद्दर था कि उसके तकाजे पूरे करो, उसकी ज़िम्मेदारियाँ अदा करो। तो जहाँ जब कहा गया कि वत्तकु यौमन, उस दिन से डरो, तो इसका मतलब तुम भी पेश हो गए, तुम भी मारे जा सकते हो, तुम भी पकड़े जा सकते हो, बच नहीं सकते हो। ये ना ख्याल करो कि तुम्हारी उस दिन कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो उनके जहन में जो भी सिफारिशों के इम्कान थे बच जाने के, वो सारे अल्लाह ताला ने गिनवा दिए हैं। और ये गिनवाने की वजह यही है कि वो ये समझते थे कोई बात नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचा लेंगे, किसी बच्चे को दे देंगे, ग़ुलाम हमारे पास है उनको दे देंगे। वो समझते थे कि यहाँ जो मलकियतें हैं ग़ुलामों की वहाँ भी चलती रहेंगी, वो सारा अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। अब ये असूल देने के बाद, तमहीद एक अच्छी बांधने के बाद, आगे अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से बात शुरू की कि वइज़ब तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। इस बात को पेश नज़र रखो हमारे यहाँ तर्जमा कर दी, याद रखो ठीक बात है लेकिन पेश नज़र रखो, तवज्जो दो इसके ऊपर, ये बात भुलाना देना वगैरह के मानी इसके अंदर होते हैं। इस वाक़े को याद रखो, इस बात को याद रखो, इस पर गौर करो कि जब इब्राहीम के रब ने उसे आज़माया बेकलिमातिन, कलिमा लफ्ज़ को जुमले को कहते हैं, तो इब्राहीम को जब उसके रब ने आज़माया फ़अतम्महुन्ना, तो उसने उनको पूरा कर दिखाया। ये इब्राहिमी मिजाज की एक खूबी की तरफ इशारा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी इस बुलंद दर्जे की है कि वो अल्फाज की बिल्कुल बेआइन ही पैरवी करते हैं। जैसे अल्फाज बोले गए लफ्ज़ों के मुताबिक अमल करने की कोशिश करते हैं, लिटरल सेंस में ले लेते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते। उसके लिए ये अल्फाज हैं कि मैंने बातों में आजमाया तो उन्होंने उनको पूरा कर दिखाया, फ़अतम्महुन्ना, बातें पूरी कर दी, जो कलिमात कहे गए थे, जो अल्फाज बोले गए थे, उनको पूरा कर डाला। ये उनका ख़ास मिजाज है, इताअत के आखिरी दर्जे पर खड़े हैं। ऐसी मिसाल देना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसा काम करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि लफ्ज़ लफ्ज़ की पैरवी कर डाली जाए। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हीं आयतों में अगर आज हो जाती हैं तो तब भी, नहीं होती तो अगली में वाजे करूँगा कि उन्होंने इसका लफ्ज़ों की किस तरह पैरवी करते हैं। एक बात अल्लाह की ज़ुबान से सामने आएगी तो फिर उसकी पैरवी पूरी तरह से करते हैं, छोटा सा भी इन्हराफ नहीं करते। तो कहते हैं कि जब मैं तेरे रब ने इब्राहीम को आजमाया चंद बातों में तो उन्होंने वो बातें पूरी कर डाली। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं आपको लोगों का रहनुमा बनाने वाला हूँ, इमाम बनाने वाला हूँ। इमाम से मुराद यह है कि खुदा का पैगाम पहुँचाने वाला लीडर, रहनुमा, के जिनको देखकर जिनकी पैरवी की जाती है। इमाम अरबी ज़ुबान में कई मानी रखता है, किताब के मानी होते हैं, ऐसी किताब जो हदायत वाली हो, इमाम के मानी उस आदमी के हैं जो सामने खड़ा हो, और उस आदमी भी के भी हैं जो आगे आगे चल रहा हो, लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं, जिसको हम लीडर कहते हैं। तो फरमाया कि मैं तुम्हें, अब ये अकेले पेश नज़र है, का कलस बोला गया जाए लू का, मैं आपको लोगों के लिए इमाम बनाने लगा हूँ। ये तर्जमा मैं कर रहा हूँ अपने लिहाज से, इसको तर्जमानी समझ लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला आप नहीं बोलेंगे, अल्लाह ताला तो तुम बोलेंगे। मैं तुम्हें इमाम बनाने लगा हूँ, तो मैं तर्जमानी करते हुए अपनी तरफ से आप डाल रहा हूँ, अल्लाह ताला ने आप नहीं कहा, तुम्हें कहा है, मैं तुम्हें इमाम बनाने लगा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात कबूल फरमाई और कहा कि वह मिन ज़ुर्रियति, और मेरी औलाद में से भी, ठीक है। अब ये अगर अल्लाह ताला कह देते हाँ, तो पिछली सारी बात यहूद की माननी पड़ती कि औलाद इब्राहीम है तो इमाम है, बस ठीक है। तो जब उन्होंने पूछा कि वह मिन ज़ुर्रियति, मेरी औलाद भी इमाम होगी, काल अल्लाह ताला ने फरमाया ला यनालो अहद ज़ालिमीन, मेरे सहद में ज़ालिम शामिल नहीं है। जवाब यही दिया कि हाँ तुम्हारी औलाद होगी लेकिन नेकी की बुनियाद पर, सिर्फ औलाद होने की वजह से नहीं। फितरी सी बात है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहूद ने यह ख्याल कर लिया कि शायद औलाद हैं तो इसलिए कामयाब हो जाएंगे। तो उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह के दरमियान जो मुकालमा हुआ था उसको पेश कर दिया, ताकि वो जो उनका अपना ख्याल है वो दूर हो जाए। तो कहा कि मैंने इब्राहीम से कहा कि मैं तुम्हें इमाम बनाने लगा हूँ लोगों का, तो आगे से उन्होंने पूछा कि मेरी औलाद में से भी होंगे, तो फरमाया कि नहीं, ज़ालिम नहीं होंगे, बाकी होंगे। अब ये आयत बहुत सख्त जगह पर आई है, यानी पीछे जो इनकार करने वाले यहूदी हैं उन सबको अल्लाह ताला ज़ालिम करार दे रहे हैं, सबको अल्लाह ताला ज़ालिम करार दे रहे हैं कि अब कुरान मजीद का इनकार करने वाले इस इमामत से खारिज हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने आप को ज़ालिम साबित कर दिया है। तो ये वाक़या जो है, ये पिछली पूरी जो यहूद के बारे में बात चल रही थी कि यहूदी हो जाओ या नसरानी हो जाओ और ये हो जाओ और वो हो जाओ, वो सारा बिल्कुल अल्लाह ताला ने ख़ुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो मुकालमा हुआ था उसको सामने रख कर बात वाज़े कर दी कि मेरा जो अहद है वो बुरे लोगों को शामिल ही नहीं करता। तो जो इस इमामत के दर्जे की चीज़ थी वो तो तुम पूरे नहीं उतर रहे उसके ऊपर। अब ज़ाहिर है कि ये बात यहूद के लिए बिजली बनकर गिरी होगी, फितरी सी बात है, छोटी बात नहीं है कि औलाद इब्राहिमी की कोई हैसियत नहीं है सवाए इसके कि वो नेक हों और उसी अहद की पाबंदी करें जिसको नेमत के लफ्ज़ से ऊपर बयान किया गया। ये अजीब वगरीब बात है कि अंबिया की औलाद के साथ हमेशा ऐसा होता रहा है कि वो औलाद ये समझती है कि हम अब बड़े आला किस्म के लोग हैं और हमें आग नहीं छुएगी। खुद हमारे यहाँ भी सईदा फ़ातिमा की औलाद के बारे में ऐसा ही समझा जाता है बाज़ लोगों के यहाँ, सारी उम्मत तो ऐसा नहीं समझती लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसा समझती है कि बस औलाद इब्राहिम जो है, औलाद फ़ातिमा जो है, अहले बैत जो हैं वो इंशाअल्लाह जन्नती हैं ख्वाह वो किसी भी तरह के हों। तो उनके लिए भी कुरान मजीद की यही आयत फैसला कुन है, ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, कि मेरा जो अहद है वो ज़ालिमों को शामिल नहीं करता। ठीक है, तो ये ना कुरान मजीद, ना तौरात और ना इंजील, तीनों ने ऐसा मज़हब नहीं दिया जो नस्ली है। नस्ली मज़हब नहीं है ये, यहूद ने इसको नस्ली बना दिया और हमारे भी एक मकतब फ़िक्र ने इसको नस्ली बना दिया कि ये औलाद के अंदर चलता है, ऐसा हर किस नहीं है। ये मानने वाले और नेक अमल करने वालों के साथ चलता है। इसी बात को 62 नंबर आयत में भी वाज़े किया गया था कि जो भी यहूदियों में से, नसरानियों में से, मुसलमानों में से, साबेइन में से अल्लाह को मानते हैं, नेक अमल करते हैं, वही निजात पाएंगे, उन्हीं का अजर मिलेगा। किसी ख़ानदान से होना, किसी तबके से होना, किसी कौम से होना, ये निजात का ज़रिया नहीं है। तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने यही वाज़े किया था और यहाँ भी उसी असूल को वाज़े कर दिया कि मेरा अहद ज़ालिमों को शामिल नहीं है। ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, अरबी तरीके के मुताबिक पहला हिस्सा इसका हज़्फ कर दिया गया है, वो ये था कि हाँ तुम्हारी औलाद में से भी इमाम होंगे लेकिन सारे नहीं, वो छोड़ दिया गया है। क्योंकि अरब जो हैं उनके कलाम की ये खूबी, खुद वो बयान करते हैं कि ऐसा कलाम नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को बेवकूफ़ समझा जाए कि सामने वाला बेवकूफ़ है, उसको पूरी तफसील करके बतानी पड़ेगी। ये उनके यहाँ बड़ी हसासियत थी इस मसले में, चुनाचे वो अपनी जो लिखते थे, ख़त भी वगैरह लिखना है तो उसमें नुक्ते वगैरह नहीं डालते थे अपने लिए जब लिखते थे। मसलन एक अरब ने एक अरब को ख़त लिखना है तो उसमें ना नुक्ते डालते थे ना एराब लगाते थे, उनको पता था कि सामने वाला अरब है, पढ़ लेगा, समझ लेगा, मुश्किल ही कोई नहीं। जैसे ही वो गैर अरबों के लिए लिखते, और ये नबी सबसे पहले की बात है, गैर अरबों के लिए लिखते तो नुक्ते भी लगा देते और एराब भी जहाँ ज़रूरी होते थे लगा देते थे। तो इस तरह से ये उनका, तो हमारे यहाँ ये बात बड़ी कही जाती है कि कुरान पर नुक्ते नहीं थे बाद में लगे हैं, वो अरबों की शान के ख़िलाफ़ था कि नुक्ते लगाएं, उन्हें गैर अरबों के लिए लगाने पड़े, उनके लिए लगे होते हैं। मैंने जब ये पढ़ाया था किरातों वाला किसी अपने कोर्स में, गालबन अंडरस्टैंडिंग फ़िक्र फ़राही वाले कोर्स में, तो मैंने उर्दू के लिख के अल्फाज तो उनके नुक्ते उड़ा दिए थे। तो मैंने कहा पढ़िए, सब पढ़ लिए, किसी को मुश्किल पेश नहीं आई, नुक्तों से कुछ भी नहीं होता, अब ज़रा तवज्जो करेंगे तो पढ़ लेंगे। और जुमला मैंने लंबा लिखा हुआ था, मसलन मैं घर में हूँ और मेरे बच्चे घर में नहीं हैं, तो किसी पर नुक्ते नहीं लगे हुए थे, ना मैं पे, ना मैं हूँ, किसी जगह पर भी नहीं, सब ने सही पढ़ा था, कोई मुश्किल नहीं पेश आई। क्योंकि वो हमें पता है हमारी ज़ुबान लिखी हुई है, ठीक है। तो ऐसा ही कुरान मजीद के साथ था। तो ये बोलने में भी वो बातें बयान नहीं करते थे जो दूसरा समझे कि मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, और वो हर ज़ुबान के अंदर बोल बोल के वो वाजे हो जाती हैं कि किस तरह से बात की जाए। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने नाम नहीं कहा कि हाँ तुम्हारी औलाद में भी है, बस अगला जुमला कह दिया जिससे दूसरा हिस्सा खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि जालिम शामिल नहीं है, गैर जालिम शामिल है इस अहद में। जालिम जो है ये कुरान मजीद की एक तरह की इस्तलाह बन गई है। जालिम उस शख्स को कहते हैं जो अपने मकाम को पहचाने बगैर गलत रास्ता इख्तियार कर ले। जुल्म की असल मानी है वज़ु शय फी गैर महल्ले ही, कि मसलन ये ग्लास की जगह यहाँ पर थी, मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो ये जुल्म हो जाएगा। आपका हक बनता था कि आपको मुलाजमत दी जाए, मैंने अपने भाई को दे दी, तो मैंने भाई को गलत जगह पर रख दिया और आपको गलत जगह पर रख दिया। तो ये होता है जुल्म के मानी। उससे जुल्म के वो मानी जो हमारे यहाँ जुल्म उर्दू है वो पैदा हो गए, वो भी जुल्म के अंदर शामिल, अरबी में भी मौजूद है। तो मैं, मेरा क्या मकाम है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैंने बंदा बनने से इनकार कर दिया तो क्या किया, जुल्म किया, मैंने बंदगी वाला रवैया अख्तियार नहीं किया तो जुल्म किया, अपना मकाम नहीं पहचाना। बेटे ने बाप के मुकाबले में बाप की तरह खड़ा हो गया है तो उसने अपना मकाम नहीं पहुँचाना, वो जालिम है। तो ये है जुल्म के माने। तो जो इनको फजीलत दी गई थी उसके मुताबिक इन्होंने अमल नहीं करना, जो इनको हदायत दी गई थी उस पर नहीं चले, तो ये जालिम है। जालिम जो है वो जालिमी अनफुसहम के अल्फाज में भी कुरान ने इसका तस्करा किया कि जो अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले हैं। जानों पर जुल्म ढाने वाले का मतलब है, इसको भी समझ लीजिए, ये कुरान का बड़ा अहम तसव्वुर है कि मिसाल के तौर पर मैंने आपकी चोरी की तो मैंने आप पर जुल्म किया, ऐसे ही, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ, हकीकत में मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मैंने आपको गाली दी तो बज़ाहिर मैंने आपके ऊपर जुल्म किया है, लेकिन हकीकत में मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है। क्योंकि आज की गाली की कीमत तो 10 रुपये थी, 20 रुपये थी, क़यामत वाले दिन वो दोज़ख का सामान बन के सामने आ जाएगी। तो ये ज़ालिमी अनफुसहम का मतलब है कि जब मैं बुराई करता हूँ तो बज़ाहिर तो मैं उस मज़लूम के साथ ज़्यादती कर रहा होता हूँ, लेकिन हकीकत में अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा होता हूँ। तो ज़ालिम इस मानी में भी कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है। तो ला यनालु अहदी ज़ालिमीन का मतलब है जिन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रखी है, उनको मैं इस अहद में शामिल नहीं करूँगा। तो अब ये तमहीद में बहुत ही मुनासिब बात से तमहीद का आगाज़ किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को आगे तासीस करने के लिए और मिल्लत इस्लामिया की, और यहूद को आईना दिखाने की कि तुम जिन बातों के पीछे पड़े हो वो तो वहाँ मौजूद ही नहीं थी, ना इब्राहीम के दरमियान, ना अल्लाह के दरमियान, ना किताब इलाही को पढ़ने वाले, तो रात को पढ़ने वाले भी जानते हैं इसको। तो अब एक पहलू से आप ये भी कह सकते हैं कि जो पीछे अहले किताब का जिक्र हुआ, तलावत का हक अदा करने वाले हैं, उनको भी बताया जा रहा है कि असल वाक़यात क्या थे और उम्मत ने तुम्हारी ने कैसे समझ लिया। तो देखिए तमहीद कितनी खूबसूरत है कि बनी इसराइल तुम्हारे कोई चीज़ काम नहीं आएगी, ना कोई आदमी, ना कोई पैसा, ना कोई शफात, ना कोई मदद आएगी, और रह गया तुम्हारा ये ख्याल कि औलाद इब्राहिम में से होना, हम इमाम हैं, बख्शे हुए हैं, अल्लाह के बेटे हैं और चहेते हैं। फरमाया कि ऐसा तो मैंने नहीं कहा था, मैंने तो चहेते बनाया था उनको जो जालिम नहीं है, उनको चहेते बनाया था, उनको मैंने इमाम बनाया था, तुम कहाँ से आ गए, तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे तो करतूत ही ऐसे नहीं है कि तुम्हें इमामत दी जाए। तो यह बात बन गई। आगे फरमाया कि वाई जलनल बैता मसाबतन लिन्नासी व अमना, और इस बात को भी याद रखो, अब ये बनी इसराइल को कहा जा रहा है, मुझे आपको नहीं, और इस बात को भी याद रखो कि ये जो घर है बैतुल्ला खाना काबा, इसको जब हमने मसाबतन लिन्नास बनाया था, मसाबा उस जगह को कहते हैं जहाँ लोग आकर इकट्ठे हो सकें, वहाँ आकर रह सकें, वहाँ जमा हो सकें, تو ایک پبلک پلیس کے طور پر بنا دیا گیا، مذہبی طور پر ایک مذہبی پبلک پلیس بنا دی گئی. اس سے پہلے کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو مذہبی معنی میں پبلک پلیس ہو، ایسا کوئی گھر نہیں ہے. بامنا اور امن والی جگہ بنایا. وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا جس کو امن حاصل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے لیے جو امن کا قاعدہ بنایا وہ حیرت انگیز ہے. یعنی خاص طور سے چار مہینے اور بیت اللہ کا جو حرم تھا اس میں کسی کو قتل کرنا، کوئی جنگ کرنا، کوئی شکار کرنا یہ بالکل منع کر دیا گیا تھا. اس کی طرف اشارہ ہے سورہ لیلاف میں بھی، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قریش مکہ کو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے امن حاصل تھا. وہ پورے عرب میں آرام سے چل سکتے تھے. بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں قریشی ہوں، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے بعد پتہ چلتا کہ یہ قریشی ہیں، واپس کر جاتے تھے. یعنی یہ صورتحال تھی. تو یہ امن جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا ہے. یہ جو دونوں باتیں ہیں یہ دلیل کے طور پر ہیں، اس بات کی دلیل کے طور پر کہ ملت ابراہیمی میں سے تم نے خانہ کعبہ کو نکال دیا، مکہ کو نکال دیا، بنی اسماعیل کو نکال دیا، حج کو نکال دیا، قربانیوں کو نکال دیا جو اس کے لیے کی جاتی تھیں، وہ ساری تم نے نکال دی، تو دین تمہارے پاس بچا کیا تھا؟ تو میں نے ابراہیم کو امام بنایا تھا، تم نے ابراہیم کی امامت کو نہیں مانا اور اس دین کے ایک حصے کو فراموش کر دیا. تو میں نے یہ جو گھر ہے جو مکہ میں قائم ہے یہ میں نے لوگوں کے لیے مرکز بنایا تھا اور امن کی جگہ بنائی تھی، اور یہ حکم دیا تھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، جہاں ابراہیم علیہ السلام مقیم ہیں وہیں پر نماز کی جگہ بنائی جائے گی. یہ تاریخ پوری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی بعض مسلمان علماء محققین یہ مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیر سبا میں قیام اختیار کیا. قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہی مقیم تھے مکہ ہی میں. تو مقام رہنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں. اب جو بیت اللہ شریف میں مقام ابراہیم ہے وہ دراصل وہ ایک منار سے چھوٹا سا بنا ہوا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا تعمیر کعبہ کے لیے کچھ کام کیا، تو اس معنی میں لے لیا گیا ہے. اور اس آیت کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے وہاں دو رکعت نفل پڑھا کرو. یہ تو نہیں اللہ نے کہا. اللہ نے تو کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو. تو یہ پورے بیت اللہ کی طرف اشارہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اسی مقام پہ قیام پذیر تھے، تو اس مقام پر ہی بیت اللہ بنا دیا گیا. یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. ایسا جہاں کیونکہ سورہ حج میں بیان کیا ہے کہ بوانا لابراہیم مکان البیت، ہم نے گائیڈ کیا تھا ابراہیم کو کہ گھر کہاں بنانا ہے میرا، یعنی بیت اللہ کہاں بنانا ہے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں، اسی کی یہاں وضاحت آ گئی ہے کہ جہاں قیام کیا گیا تھا وہیں پر بیت اللہ بنا دیا جائے. تو مثلا یہاں ان کا گھر ہے تو اس کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں بیت اللہ بنا دیا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو ہی بیت اللہ بنا دیا جائے، نماز کی جگہ بنا دیا جائے. اور عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی ذمہ داری لگائی کہ وہ دونوں اس گھر کو بتوں سے پاک رکھیں گے اور دوسری قسم کے حرکتوں سے بھی باز رکھیں گے. بعض بدعتیں ایجاد کر لی جاتی ہیں، ان سے پاک رکھیں گے. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے. اب یہ لفظ جو ہیں بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ جب ایک لفظ بولتے ہیں تو اس سے کئی غلطیاں دور کرتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اس گھر کو پاک رکھیں، इब्राहिम इस घर को छोड़कर जा नहीं सकते हैं। ये छोड़ कर जा सकता है? अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई कि इस घर की देखभाल करनी है और खुद जाकर बेरे सभा में काम कर ली, मुमकिन है? तो वो सारी कहानी जो है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़कर चले गए, वो गलत है, वो यहीं रहे। और तौरात में लिखा हुआ है कि हजरत सारा के फौत होने पर इब्राहिम और इस्माइल वहाँ गए, वहाँ नहीं ठहरे हुए थे। बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि ना कनान में ठहरे हुए थे, ना मक्का में ठहरे हुए थे, बेरे सबा में ठहरे हुए थे। ये कुरान की इन आयात के ख़िलाफ़ है। वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम, और हमने अहद किया इब्राहिम से, हुक्म दिया उनको कि आप इस घर को पाक साफ रखेंगे। दोनों की जिम्मेदारी लगाई थी, ना इस्माइल जा सकते थे ना इब्राहिम जा सकते थे। तवाफ़ ये इबादत है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने अपने आप को नज़र कर दिया खुदा के हजूर। अभी तक हमारे यहाँ ये रस्म चलती है कि कोई चीज़ वार नहीं हो तो घुमाते हैं उसको, तो खाना काबा पर हम अपने आप को घुमा देते हैं कि हम अपने आप को वार रहे हैं अल्लाह के घर से। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वारने का मतलब कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, वो मतलब नहीं है, वो ये है कि पैसे वार के फेंक दिए कि अब जो बीमारियाँ इसकी थी वो पैसों के साथ चली गई, ये नहीं है। वारने का मतलब है कि मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ, नज़र करता हूँ, तोहफे में पेश करता हूँ इस घर के, इस घर वाले को। तो अपने आप को वहाँ वारने का मतलब, तवाफ़ का मतलब है कि जैसे परवाना शमा के चक्कर लगाता है और उसमें जल के ख़त्म हो जाता है, इसी तरह हम भी बैतुल्लाह के चक्कर लगाते हुए खुदा के हजूर ही फौत होना चाहते हैं। ये तसव्वुर है, खुदा के हजूर कुर्बान होना चाहते हैं। ये तकाफ से हम वाकिफ़ हैं कि ये मस्जिद में क्याम को कहते हैं, ये होता ही मस्जिद में है, मस्जिद से बाहर कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ एक इज्तिहाद किया गया कि ख़वातीन घर में इतकाफ़ बैठ जाएँ, वो इज्तिहादी चीज़ है, असल इबादत मस्जिद में होती है कि वहीं पर होनी चाहिए। अल्लाह ताला उसके आस को इज्तिहाद को कबूल फरमाए, बहुत ख़वातीन करती रही हैं, लेकिन असल इतकाफ़ मस्जिद में ही होता। अज़वाज मुतहरात ने भी हमेशा मस्जिदी में इतकाफ़ किया। अब चूँकि हमारा हौसला नहीं पड़ता कि खातून 10 दिन के लिए रात दिन मस्जिद में बैठी रहे, पता नहीं अल्लाह खैर करे कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से फिर एतकाफ़ घरों में करने लग गई, वरना मस्जिदों में पहरा अच्छा होना चाहिए, अच्छे इंतज़ाम होने चाहिए। तो फरमाया कि मैंने इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म दिया कि वो दोनों ताहिरा में तस्निया कसीगा, दोनों मेरे घर को पाक रखेंगे ताकि तवाफ़ करने वाले आकर खुदा के घर का तवाफ़ करें, बुतों का नहीं, और इतकाफ़ करने वाले इत्मीनान से खुदा की इबादत कर सकें, बुतों की नहीं, वर रुकता इस सजूद, और सजदे करने वाले और रुकू करने वालों के लिए भी। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ताइफीन और आकिफीन के बीच में वाव है, और फिर वर रुका से पहले भी वाव है, यानी एतकाफ़ करने वाले, तवाफ़ करने वाले और एतकाफ़ करने वाले और रुकू और सजूद के बीच में वाव नहीं है। ये इसका मतलब अरबी ज़ुबान में थोड़ा गहरा हो जाता है। अल्लाह ताला की सिफतें भी दो दो लफ्ज़ों में आती हैं, बीच में वाव नहीं होती, जैसे अंतल अज़ीज़ उल हकीम, ए अल्लाह तू अज़ीज़ उल हकीम है। तो हमारे यहाँ ये इसलूब नहीं है, कहीं कहीं हम इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं लंबा तगड़ा चौड़ा चकला, तो ये हम बोल लेते हैं जिसमें वाव नहीं आती, वरना हम नाम तौर से बोलते हैं नेक और साहिब इल्म, बीच में और डाल देते हैं। तो जो दो लफ्ज़ इकट्ठे एक सिफत बन जाती हैं, वो फिर दोनों मिलकर मुराद होते हैं, वो दोनों मिलकर मुराद होते हैं। तो रुका इस सजूद दरअसल नमाज को बयान करने के लिए है कि रुकू और सजदे करने वाले, लेकिन ये अलग अलग भी होता है, यानी कुछ लोग सिर्फ सजदा करने चले जाते हैं बैतुल्ला में, नमाज नहीं पढ़ी, नमाज का टाइम नहीं है, खुदा के हजूर सजदा कर दिया, आ गए, नफली सजदा कह लीजिए, ऐसा ही रुकू भी होगा। तो एक और बात जान रखिए कि पुरानी अरबी में, जो कुरान मजीद के ज़माने की अरबी है, उसमें इबादत वाला लफ्ज़ मौजूद नहीं है, वरना होना चाहिए आबिदीन, عبادت کرنے والوں کے لیے. تو عابدین کا لفظ عبادت کے معنی میں نہیں بولا جاتا تھا, یہ بعد میں استعمال ہوا ہے. تو اس کے لیے رکوع سجود کرنے والے اور تسبیح کرنے والے یہی الفاظ بولے جاتے تھے. تو فرمایا کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اس گھر کو پاک صاف رکھیں, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے, یعنی نمازیوں کے لیے. یہاں پہ روک لیتے ہیں 125 نمبر آیت پہ, وقت سے زیادہ ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.